ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य में संहिताओं के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है। ये ग्रंथ वैदिक साहित्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है मंत्र, यज्ञ आदि। वैदिक साहित्य का वह भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए वेद मंत्रों के प्रयोग के नियमों, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि प्रस्तुत करना है, और जिसमें स्थान स्थान पर सुविस्तृत दृष्टांतों के रूप में परंपरागत कथाओं का समावेश है, ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथः। वास्तव में यज्ञ विज्ञान का गंभीर विवेचन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण कहलाते हैं। अनेक वैदिक विद्वान ब्राह्मण ग्रंथों को भी वेद कहते हैं। मंत्र ब्राह्मण योर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण भाग का सामूहिक नाम वेद है। शबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों की विषय सामग्री को इस प्रकार बतलाया है। हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैते तु विषया ब्राह्मणस्य च। अर्थात यज्ञ क्यों किए जाएं, कब किए जाएं, किन साधनों से किए जाएं, यज्ञ के अधिकारी कौन है कौन नहीं है इत्यादि विभिन्न विषयों का निर्देश इन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के वर्ण विषय को चार भागों में बांटा जा सकता है। एक विधि भाग, दो अर्थ भाग, तीन उपनिषद भाग तथा चार आख्यान भाग। विधि भाग में यज्ञों के विधानों का वर्णन है। इसमें यज्ञीय कर्मों का अर्थ तथा अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति बतलाई गई है। अर्थवाद भाग में यज्ञों के महात्म को समझाने के लिए प्ररोचनात्मक विषयों का समावेश है। इसमें यज्ञकारों के समर्थन में सुंदर सुंदर कथाएँ कही गई हैं। मीमांसाकार जैमिनी ने अर्थवाद के भी तीन भेद बतलाए हैं, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। ब्राह्मण ग्रंथों के उपनिषद भाग में ब्रह्म तत्व का विवेचन है। इसमें रमणीय कथाओं के माध्यम से आत्मा, जीव एवं जगत से संबंधित विषयों का मनोहारी वर्णन है। आख्यान भाग में प्राचीन ऋषि वंशों, आचार्य वंशों तथा राजवंशों की कथाएँ वर्णित है। प्रत्येक वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अब क्रमशः इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण, दो कौशितकीय ब्राह्मण। एक ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ में 40 अध्याय हैं, 5-5 अध्यायों की 8 पंचिकाएं हैं। इनके रचयिता महीदास ऐतरेय हैं। इनका जन्म इतरा नामक दासी से हुआ था। इसमें सोमयज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। प्रारंभिक 16 अध्यायों में एक दिन में समाप्त होने वाले अग्निष्टोम संज्ञक सोमयज्ञ का वर्णन है। 17वें तथा 18वें अध्यायों में एक दिन में समाप्त होने वाले अग्निष्टोम संज्ञक सोमयज्ञ का वर्णन है। 17वें तथा 18वें अध्यायों में 360 दिनों में समाप्त होने वाले गवामयन संज्ञक सोमयज्ञ का वर्णन है। 19वें अध्याय से 24वें अध्याय तक 12 दिन में पूर्ण होने वाले द्वादशाह संज्ञक सोमयज्ञ का वर्णन प्राप्त होता है। अवशिष्ट 16 अध्यायों में अग्निष्टोम यज्ञ तथा कतिपय अन्य विषयों का समावेश है। इन ब्राह्मण के 23 से 40वें अध्याय तक राजपुरोहित तथा राज्याभिषेक आदि की स्थितियों का भी वर्णन है। दो कौशितकीय ब्राह्मण। कौशितकीय ब्राह्मण का दूसरा नाम सांख्यायन ब्राह्मण भी है। यह ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण के प्रारंभिक 5 अध्यायों का विकसित रूप ही प्रतीत होता है। इस ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसमें कतिपय विशिष्ट आख्यानों की सत्ता भी पाई जाती है। प्रोफेसर वेवर ने ईशान एवं महादेव से संबंधित सूक्तों के आधार पर कहा है कि यह ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की रचना के अंतिम काल में रचा गया है। इसी ब्राह्मण की 7वीं पंचिका में शुनःक्षेप आख्यान है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। राजा हरिश्चंद्र वरुणदेव को प्रसन्न करके एक पुत्र प्राप्त करते हैं। पुत्र का नाम रोहित है। शर्त यह थी कि वरुण जब चाहेंगे अपने पुत्र को वापस मांग लेंगे। पुत्र रोहित जब पूर्ण युवा हो जाता है, वरुण उसे मांगता है, परंतु राजा वरुण का बलि देना चाहता है। वरुण यह सुनकर जंगल में भाग जाता है। इसके पश्चात राजा को वरुण के शाप से जलोदर का रोग हो जाता है। रोहित इस समाचार को सुनकर लौटना चाहता है, किंतु ब्राह्मण वेशधारी इंद्र उसे भ्रमण के महत्व को समझाकर लौटने नहीं देता। इस प्रकार वह 5 वर्षों तक जंगल में घूमता रहता है। 6ठे वर्ष रोहित को अजिगर्त ऋषि अपने 3 पुत्र शुनःपुच्छः, शुनःक्षेप तथा शुनःलांगुल और अपनी पत्नी के साथ मिलते हैं। रोहित एक पुत्र के बदले ऋषि को 100 गायें देने को कहता है। अजिगर्त अपने मध्यम पुत्र शुनःक्षेप को रोहित के लिए दे देते हैं। वरुण क्षत्रिय रोहित की अपेक्षा ब्राह्मण सुनाशेप को बलि के लिए श्रेष्ठ समझकर स्वीकार कर लेता है। राजसूय यज्ञ में पशु के स्थान पर सुनाशेप की बलि का आयोजन होता है। इसी समय एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर कौन लेगा। अजिगर्त स्तंभ में बांधने के बदले 100 गाय तथा मारने के बदले 100 गाय लेकर उपस्थित हो जाता है। इसी समय सुनाशेप वेदों की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करता है कि 3 ऋचाओं में उषा की स्तुति होने पर उसके बंधन खुल जाते हैं। हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी ठीक हो जाता है। इसके बाद पुरोहित वर्ग यज्ञ महोत्सव में सुनाशेप का स्वागत करता है। हरिश्चंद्र यज्ञ के होता बनते हैं तथा अपने 100 पुत्रों की उपेक्षा करके सुनाशेप को पुत्र बनाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इस आख्यान में स्त्री को मित्र, पुत्री को विपत्ति तथा पुत्र को स्वर्गीय कहा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनीय तथा कार्णव शाखाओं के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दोनों ही शतपथ के नाम से विख्यात हैं। माध्यंदिन शतपथ में 100 तथा कार्णव शतपथ में 104 अध्याय हैं, इसलिए इनका नाम शतपथ है। यह ब्राह्मण विस्तृत एवं सुव्यवस्थित है। माध्यंदिन शाखा के ब्राह्मण का विभाजन 14 कांडों में हुआ है। इसके प्रारंभिक 9 कांडों में वाजसनेयी संहिता के प्रारंभिक 18 अध्यायों की व्याख्या है। इस ब्राह्मण के रचयिता महर्षि याज्ञवल्क हैं। 10वें कांड में अग्नि रहस्य का विवेचन है। 11वें कांड में 8 अध्याय है। 11वें से लेकर 13वें कांड तक उपनयन, स्वाध्याय, अंत्येष्टि, सर्वमेध आदि का विवेचन है। इसका 14वां कांड आरण्यक है। इसके प्रथम 3 अध्यायों में प्रवर्ग्य उत्सव का वर्णन है। इसी 14वें कांड के अंत में बृहदारण्यक उपनिषद प्राप्त होता है। शतपथ ब्राह्मण में पर्याप्त ऐतिहासिक तथ्यों की उपलब्धि होती है। इसमें अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं जिन्हें महाभारत की अनेक कथाओं का स्रोत कहा जा सकता है। राम कथा, कद्रु सुपर्णा की कथा, पुरूर्वा उर्वशी का प्रेमाख्यान, अश्विनी कुमारों द्वारा च्यवन ऋषि को यवनदान आदि कथाएं शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृत साहित्य के काव्य, नाटक, चंपू आदि अनेक विधाओं के सूत्र ब्राह्मण ग्रंथों में विद्यमान हैं। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण के समान इसका पाठ स्वरों से युक्त है, परिणामतः अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। यह ब्राह्मण 3 कांडों में विभक्त है। इसके प्रथम और द्वितीय कांड में 8 अध्याय हैं जो प्रपाठक नाम से अभिहित होते हैं तथा तृतीय कांड में 12 अध्याय हैं जिनके अवान्तर विभाग अनुवाक नाम से प्रसिद्ध हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्नाधान, गवामयन, वाजपेय, सोम, नक्षत्रेष्टि तथा राजसूय का वर्णन हुआ है। द्वितीय कांड में अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणि, बृहस्पति, सव, वैश्वसव इत्यादि अनेक सत्रों का विवेचन हुआ है। प्रत्येक अनुष्ठान के उपयोगी ऋक् मंत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। नासदीय सूक्त के मंत्रों का विनियोग एक सामान्य होम निमित्त प्रस्तुत किया गया है। तृतीय कांड अर्वांतर कालीन रचना माना जाता है जिसमें सर्वप्रथम नक्षत्रेष्टि का सविस्तार वर्णन है। चतुर्थ कांड में पुरुष मेध के उपयोगी पशुओं का विवेचन हुआ है जो कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं में अनुपलब्ध है। उसे माध्यंदित संहिता से उद्धृत किया गया है। इस कांड के अंतिम 3 अनुवाक 10-12 प्रपाठक काठक नाम से यजुर्वेदियों द्वारा अभिहित किए जाते हैं। संभव है यह अंश काठक शाखीय ब्राह्मण का हो और किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ संग्रहित हो। नचिकेत अग्नि की वेदी तथा उपासना का यहाँ विशेष रूप से वर्णन हुआ है जिसमें अग्नि विद्या के द्वारा ही मोक्ष प्राप्त करने का निर्देश है। द्वादश प्रपाठक में चतुर्होत्र तथा वैश्वसृज याग का विवेचन हुआ है। वैश्वसृज याग एक प्रतीकात्मक याग है जिसमें समस्त पदार्थों का होम संपन्न किया जाता है। सामवेदीय ब्राह्मण संप्रति सामवेद से संबंधित 4 ब्राह्मण ग्रंथों की सत्ता प्राप्त होती है। तांड या पंचविंश ब्राह्मण, षडविंश ब्राह्मण, जैमनीय ब्राह्मण तथा सामविधान ब्राह्मण, तांड ब्राह्मण 25 अध्यायों से संबलित होने के कारण पंचविंश भी कहलाता है। इसमें सामान्यतः सोमयज्ञ का वर्णन है। रचना की दृष्टि से यह प्रौढ़ तथा प्राचीन है। इसमें ब्रात्यस्तोम नामक यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ से ब्रात्यों अथवा भ्रष्टों को शुद्ध करके उन्हें ब्राह्मणों अथवा आर्य जातियों के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता था। इसके रचयिता संभवतः तांड नामक कोई ऋषि हैं अथवा तांड ऋषि की शाखा से इस ब्राह्मण का संबंध है। षडविंश ब्राह्मण कुछ विद्वान तांड ब्राह्मण का अंग स्वीकार करते हैं। इसके अंतिम अध्यायों को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है, जिसमें इंद्रजाल तथा अन्य अलौकिक घटनाओं का उल्लेख है। देवताओं के रुदन तथा हास्य का भी संकेत इसमें यत्र तत्र प्राप्त होता है। जैमिनी ब्राह्मण का संबंध सामवेद की तवलकार शाखा के साथ है। इसके रचयिता जैमिनी नामक कोई ऋषि रहे होंगे। इसमें 5 मंडल हैं। प्रथम 3 मंडलों में यज्ञ विधि का वर्णन है। चौथा मंडल उपनिषद ब्राह्मण है। 5वें मंडल का नाम आर्ष्य ब्राह्मण है। इसमें सामवेदीय ऋषियों के नाम की एक लंबी सूची प्राप्त होती है। धर्म तथा आख्यान के इतिहास की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। चतुर्थ सामविधान ब्राह्मण में जादू टोना शत्रु निवारण धनोपार्जन तथा नानाविध उपद्रवों की शांति के लिए सामगायन एवं कतिपय अनुष्ठानों के विधान का वर्णन है, इसलिए इसको सामविधान नाम प्राप्त हुआ है। इस सामविधान के 3 प्रकरण हैं, जिसमें धर्मसूत्रों में वर्णित दोष अपराध तथा उनके प्रायश्चितों का वर्णन है। इनके अतिरिक्त सामवेद से संबंधित कतिपय अन्य ब्राह्मणों का नाम भी होता है, जैसे दैवत ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण आदि। अथर्वेदीय ब्राह्मण, अथर्वेद से संबंधित एकमात्र गोपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ एवं उत्तर गोपथ। प्रथम भाग 5 अध्यायों से युक्त है तथा द्वितीय 6 अध्यायों से। इस ब्राह्मण में शिव शब्द की प्राप्ति तथा अति परिष्कृत व्याकरण सम्मत शब्दावली इसको अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से इस पर शतपथ ब्राह्मण का पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है। इसमें ऋग्वेदीय ब्राह्मणों से भी विषय सामग्री को ग्रहण किया गया है। ब्राह्मण साहित्य के गंभीर अनुशीलन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंध रखने वाले होता नामक पुरोहित वर्ग के यज्ञ कार्यों की व्याख्या करते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंध रखने वाले अध्वर्यु संज्ञक पुरोहित वर्ग के कार्यों की व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार सामवेदी एवं अथर्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ क्रमशः उद्गाता तथा ब्रह्मा नामक पुरोहित वर्गों के कार्यों की व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मणों तथा उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य आरण्यक है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों की ही भाषा शैली में लिखे गए उनके पूरक ग्रंथ हैं। आरण्य ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन नगरों तथा ग्रामों से दूर अरण्यों में होता था। तैत्री आरण्य के भाष्य में कहा गया है, अरण्याध्यायनादे तद आरण्यक मितीर्यते अरण्य तदधीतेत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। भारतीय आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम में संहिता ग्रंथ, गृहस्थ आश्रम में ब्राह्मण ग्रंथ, वानप्रस्थ आश्रम में आरण्य ग्रंथ एवं संन्यास आश्रम में उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन विहित था। वानप्रस्थी व्यक्ति जंगलों में जाकर आरण्य ग्रंथों का ही अध्ययन एवं मनन करता था। आरण्य ग्रंथों के अध्यायों का प्रारंभ ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही है, किंतु वर्ण विषय में सामान्य अंतर दिखलाई पड़ता है, जो क्रमशः रहस्यात्मक दृष्टांतों या रूपकों के माध्यम से दार्शनिक चिंतन में बदल गया है। साधारणतः धार्मिक क्रियाकलापों और रूपकों वाले भाग ही आरण्य कहलाते हैं एवं दार्शनिक भाग उपनिषद कहलाते हैं। आरण्य ग्रंथ धार्मिक क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं तथा यत्र तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं। वेद भाष्यकार सायणाचार्य का कथन है कि आरण्य ग्रंथ साधुओं का पाठ्य ब्राह्मण ग्रंथ था। प्रोफेसर कीथ का मत है कि ब्राह्मण ग्रंथों की भांति आरण्य ग्रंथ भी पुरोहित वर्ग का पाठ्य ग्रंथ था। दोनों में अंतर केवल रहस्यों का था, जो कि ब्राह्मण में न होकर आरण्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। रामायण में उल्लेख है कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त करने के अनंतर 3 मार्गों में से किसी एक का चयन कर सकता था। 1 अपने गुरु का आजीवन रहना, 2 गृहस्थ बनना, 3 अरण्यवासी साधु बनना। इस तृतीय मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति वैखानस या वानप्रस्थ वनवासी कहलाता था। संभवतः इसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अध्ययन विहित था। आरण्य ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। ऋग्वेद के आरण्य ग्रंथ, ऋग्वेद के 2 आरण्य ग्रंथ हैं, ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय आरण्य का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण के साथ है। इसके 5 खंड प्राप्त होते हैं। दूसरे और तीसरे को उपनिषद कहा जा सकता है। दूसरे के उत्तरार्ध के 4 परिच्छेदों में वेदांत का प्रतिपादन है, इसलिए यह ऐतरेय उपनिषद कहलाता है। ऐतरेय आरण्यक के प्रथम आरण्यक में महाव्रत, द्वितीय में उक्त शास्त्र प्राणविद्या तथा पुरुष का विवेचन है। तृतीय में ध्वनि विज्ञान से संबंधित पदपाठ, क्रमपाठ, स्वर तथा व्यंजन के स्वरूप का विवेचन है। चौथे तथा 5वें में कतिपय अन्य विषयों के साथ निष्कैवल्य शास्त्र का वर्णन है। कतिपय विद्वान उपर्युक्त पांच खंडों को पांच आरण्यक मानते हैं। इनके अनुसार पांच आरण्यकों का संश्लिष्ट रूप ही ऐत्रेय आरण्यक है। ऋग्वेद का दूसरा आरण्यक कौशितकी या सांख्यान आरण्यक है। इसके तीन खंड हैं। प्रथम एवं द्वितीय खंड में कर्मकांडीय तथ्य सन्निविष्ट है। तीसरा खंड कौशितकी उपनिषद कहलाता है। अध्यायों की संख्या 15 है। यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र आरण्यक बृहत आरण्यक प्राप्त होता है। इसमें आत्मतत्व का विशद विवेचन है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित तैत्रीय आरण्यक है। इसमें कांड है। काठक शाखा में बतलाई गई आरण्य विधि का भी इस ग्रंथ में विचार हुआ है। इसके प्रथम और तृतीय प्रपाठक में यज्ञाग्नि की स्थापना से नियम है। दूसरे विचार में प्रपाठक में अध्ययन के नियम है। चतुर्थ पंचम एवं षष्ठ प्रपाठकों में दर्श पूर्ण मास आदि तथा पितृमेधादि विषयों का विचार किया गया है। इसका सातवां आठवां तथा नवां प्रपाठक उपनिषद कहलाता है, जिनमें ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन हुआ है। प्रसिद्ध उपनिषद कठोपनिषद भी इसी से संबंधित है। सामवेद के आरण्यक सामवेद से संबंधित दो आरण्यक प्राप्त होते हैं। छांदोग्य आरण्यक छह प्रपाठकों में विभक्त है। इसका संबंध छंदोगों के साथ है। छंदोग का अर्थ है सामवेद संहिता के मंत्रों को गाने वाला व्यक्ति। इस ग्रंथ में छंदोगों के करणीय कार्यों का निर्देश भी हुआ है। प्रसिद्ध सामवेदी उपनिषद छांदोग्य उपनिषद इसी का अंश है। अथर्ववेद से संबंधित एक भी आरण्य ग्रंथ संप्रति उपलब्ध नहीं है। आरण्य ग्रंथों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपनिषद में जो ज्ञानकांड प्राप्त होता है उनका प्रारंभ आरण्यकों में ही हो गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में गृहस्थों के लिए कर्मकांडों का विवेचन है, किंतु वृद्धावस्था में जब वही गृहस्थ वनों का आश्रम ग्रहण करता है तो कर्मकांड के स्थान पर उसे अन्य वस्तु के अध्ययन करने या व्यवहित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। आरण्यक उसी विषय की पूर्ति करने वाले ग्रंथ हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण विहित कर्मकांडों एवं उपनिषदों में विहित दार्शनिक चिंतन के मध्यवर्ती संक्रमण काल की श्रृंखला के रूप में है।